सच की तह तक पहुंचने के लिए इशिका ने पूरी तरह ईशानी बनने का फैसला कर लिया था। किस्मत से उन दोनों के चेहरे को छोड़कर बाकी फिजिकल अपीयरेंस काफी हद तक सेम थे। चेहरा ईशानी जैसा बनने के लिए इशिका ने दिशांक को इशिका की शक्ल का मास्क बनाने के लिए कह दिया था, जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी में कोई मुश्किल काम नहीं था। दिशांक को सब कुछ समझाने के बाद इशिका राधिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। रूम नंबर जानने के बाद वो ऊपर पहुंची तो उसने दो नर्सों को आपस में बातें करते हुए सुना। उनमें से एक ने कहा, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, अभी अभी इसे अपनी बेटी के बारे में पता चला था, जिसे किसी ने पैदा होते ही बदल दिया था, और अब वही बेटी इस दुनिया से चली गई है। ये उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर कोमा में चली गई। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक वरदान की तरह है। इस तरह इन्हें होश में रहकर उसके जाने का दुख नहीं झेलना होगा, दूसरी नर्स ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगीं। उसे राधिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अंदर जाकर उसने देखा आदर्श पानी लेने के लिए बाहर निकल रहा था, तो वो चुपके से अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया था। राधिका बैठकर बेहोश पड़ी हुई थी। इशिका ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और उसमें पढ़ते हुए अपने मन में कहा, ये सब क्या हो गया माँ, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इससे पहले कि आदर्श वापस आता, इशिका जल्दी से राधिका के पास गई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कान के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, माँ मैं इशिका हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ, प्लीज़ खुद को संभालिए और जल्दी ठीक हो जाइए, हम जल्द ही वापस मिलेंगे। जाने से पहले इशिका ने राधिका के फोरहेड पर किस किया और वहां से निकल गई। वो वहां ज्यादा नहीं रह सकती थी क्योंकि आदर्श वापस आने वाला था। फिलहाल जो हालात चल रहे थे उसमें इशिका को किसी पर यकीन नहीं था सिवाय अभिमन्यु और राधिका के। इशिका जल्दबाजी में वहां से निकली थी, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी राधिका को किस करते ही राधिका की उंगलियां हिली थीं। बिना किसी की नजरों में आए हुए इशिका वहां से निकल गई थी, तो वहीं उसके जाते ही आदर्श वापस आया। आदर्श चेहरे से इतना दुखी नहीं लग रहा था, शायद इशिका के साथ उसके कोई इमोशंस नहीं जुड़े हुए थे, इस वजह से उसे उसके जाने का कोई खास दुख भी नहीं हुआ था। आदर्श राधिका के पास पहुंचा, तभी राधिका जल्दी से खड़ी हुई और रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, इशिका मेरी इशिका कहाँ है? आदर्श जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़कर कहा, राधिका थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया है, मैं बहुत घबरा गया था, तुम ठीक हो ना? राधिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखते हुए बोली, मैंने इशिका की आवाज सुनी थी, वो यहां आई थी, मेरी इशिका कहाँ है आदर्श? आदर्श ने गहरी सांस ली और राधिका को शांत करते हुए कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए राधिका, अफसोस कि वो अब हमारे बीच नहीं रही है, इशिका हमें छोड़कर जा चुकी है। आदर्श के कहते ही मानो राधिका को होश आ गया हो, उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा आ गया जब उसकी लाश को निकाला गया था। पानी में कई घंटे रहने की वजह से डेड बॉडी फूल चुकी थी। राधिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। वो धीरे से बोली, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, मुझे उसे ढूंढना है आदर्श। इतना कहकर राधिका बेड से उठने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से वो गिरने वाली थी कि आदर्श ने उसे थाम लिया। आदर्श ने राधिका को फिर से बेड पर बैठाते हुए कहा, मैंने कहा खुद को संभालो राधिका, अगर इशिका जिंदा भी होती तो वो कभी नहीं चाहती कि तुम इस हालत में बाहर निकलो। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मेरी बेटी मुसीबत में है, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ, मुझे उसे ढूंढना है, राधिका ने जोर से चिल्लाकर कहा। ऐसी हालत में राधिका का गुस्सा करना सही नहीं था। आदर्श ने उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, अच्छा इशिका जिंदा है और बिल्कुल ठीक भी है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर हमारी बेटी को ढूंढ लेंगे। आदर्श के ऐसा कहने पर राधिका थोड़ा शांत होने लगी। कुछ देर में राधिका ने पूरी तरह से अपना होश संभाल लिया था, तो उसने आदर्श से कहा, मेरा यकीन करो, इशिका यहाँ पर आई थी, उसकी आवाज सुनकर ही मुझे होश आया था, लेकिन मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आया था, आदर्श ने जवाब दिया। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, उसने मेरे कान में आकर बिल्कुल धीरे से कहा था कि माँ मैं ठीक हूँ, अब आप भी खड़ी हो जाइए, मुझे यकीन है वो यहीं आसपास होगी, राधिका ने जिद करते हुए कहा। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि इशिका उससे मिलने के लिए नहीं आई होगी। आदर्श ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। राधिका के सामने उसका बस नहीं चल रहा था, तो उसने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं बाहर गया था, मैं दरवाजा बंद करके गया था, वापस आया तो उसी तरह दरवाजा बंद था, हो सकता है उस 5 मिनट में वो आकर चली गई होगी। आदर्श, ऐसा करो, आप जाकर CCTV फुटेज चेक करवाओ, मुझे देखना है कि सच में कोई आया था या नहीं, राधिका ने जिद पर अड़कर कहा। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। मजबूरन आदर्श को वहां के स्टाफ से बात करके CCTV फुटेज निकलवानी पड़ी। रूम के अंदर कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन कैमरे के बाहर उन्होंने एक लड़की को बाहर निकलते देखा था, जिसने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था। उसे देखने के बाद राधिका ने कहा, देखा, मैंने कहा था मेरी इशिका को कुछ नहीं हुआ, ये मेरी बेटी है, तुम जाओ उसे लेकर आओ। इस लड़की ने पूरी तरह खुद को कवर कर रखा है, ये इशिका नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। आदर्श ने राधिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका समझने को तैयार ही नहीं थी। राधिका ने तेज आवाज में चिल्ला कर कहा, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं पहचानूंगी, वो यहीं आसपास होगी, तुम बाहर जाओ और जाकर देखो उसे। राधिका ने आदर्श को खुद से दूर धकेल दिया था, मजबूरी में आदर्श को इशिका को देखने के लिए जाना ही पड़ा। वहीं राधिका ने उसके जाने के बाद खुद से बड़बड़ा कर कहा, इससे नहीं हो पाएगा, ये मेरी बेटी को नहीं पहचान पाएगा, मुझे किसी और की हेल्प लेनी होगी। राधिका ने जल्दी से अपना मोबाइल लिया और केशव सिंघानिया का नंबर निकाला। जिस दिन इशिका के किडनैपिंग की खबर आई थी उसी दिन उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए थे। राधिका ना तो कभी केशव से मिलना चाहती थी और ना ही उसकी मदद लेना चाहती थी, लेकिन इशिका के लिए वो किसी के आगे भी झुक सकती थी। राधिका ने तुरंत केशव को मैसेज भेजते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। केशव ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, बताओ क्या करना है। राधिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे केशव की मदद लेनी होगी। अचानक इशिका के किडनैप होने पर उस दिन ये मामला दब गया था कि इशिका केशव की बेटी है। ऐसे हालात में अगर राधिका केशव की मदद लेती और अगर केशव को इशिका मिल जाती तो सच का सामना तय था, ऊपर से केशव उसे अपने साथ भी ले जाता। इशिका के लिए राधिका ने खुद को सख्त किया और मैसेज टाइप करने लगी, मेरे पास मेरी बेटी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है वो जिंदा है, क्या तुम। राधिका ने पूरा मैसेज टाइप भी नहीं किया था कि तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसने जल्दी से सामने देखा तो वहां आदर्श खड़ा हुआ था। उसे देखते ही राधिका ने जल्दी से अपना फोन नीचे कर लिया। राधिका ने खुद को सामान्य करके आदर्श से पूछा, कुछ पता चला। वो लड़की यहां से बाहर निकल गई थी, चिंता मत करो, मैंने गार्ड को कह दिया है कि वो वापस आए तो उस पर नजर रखें, आदर्श ने जवाब दिया। तभी उसकी नजर राधिका के फोन की तरफ गई जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन थी। आदर्श ने एक नजर मोबाइल स्क्रीन को घूर कर देखा और फिर राधिका से पूछा, किसे मैसेज कर रही थी तुम।
राधिका ने आदर्श से कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा, उसने जवाब में कहा, मैंने केशव से हेल्प मांगी है, हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि इशिका को ढूंढ पाए, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी हेल्प कभी नहीं लेती, लेकिन ये इशिका की जान से जुड़ा हुआ है। इतना कहकर राधिका ने स्क्रीन को आदर्श की तरफ कर दिया था ताकि वो चैट को देख सके। उसके बाद राधिका ने फिर से मैसेज टाइप करना जारी रखते हुए कहा, देखना आदर्श, केशव की हेल्प मिलते ही हम जल्द से जल्द हमारी इशिका के पास पहुंच जाएंगे। राधिका बोल रही थी तभी आदर्श ने राधिका के हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो हल्के गुस्से में बोला, तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। राधिका ने आदर्श के चेहरे की तरफ देखा, वो गुस्से में रग रहा था, इसीलिए उससे बहस करना सही नहीं था। राधिका ने सफाई देते हुए कहा, देखो मैं उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, किसी ने इशिता को किडनैप किया था और वो उसे जान से मारना चाहता है, ऐसे में केशव ही हमारी हेल्प कर सकता है। मान लो केशव ने इशिका को ढूंढ भी लिया तो क्या होगा, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा, इशिका का चेहरा देखते ही वो पहचान जाएगा कि वो उसकी माँ की तरह लगती है, तुम जानती हो उसका बिहेवियर कैसा है और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, अपनी बेटी मिलते ही वो इशिका के साथ साथ तुम्हें भी मुझसे दूर ले जाएगा। मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी, राधिका ने खुद का फैसला सुनाते हुए कहा। राधिका को लगा आदर्श मान जाएगा, लेकिन आदर्श उसकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ, वो ना में सिर हिलाकर बोला, जैसे वो तुम्हारी बात सुन ही लेगा, वो ज़बरदस्ती तुम्हें और इशिका को मुझसे दूर अपने साथ लेकर ही जाएगा। राधिका के लिए केशव की मदद लेना ज़रूरी था, उसने आदर्श को समझाते हुए कहा, अब टाइम बदल गया है, मैं वो बेवकूफ़ जवान लड़की नहीं हूँ जो उसकी बातों के जाल में जाकर उसके साथ चली जाऊंगी और पहले की तरह कोई भी बेवकूफ़ी कर दूंगी। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, हमें उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आदर्श जवाब में बोला, जानती हूँ राधिका, आज भी वो तुमसे प्यार करता है, कुछ भी नहीं बदला है, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत और सबसे अलग हो। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुमने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया, जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वो तुम्हें फिर से हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये सच था कि राधिका ने अपने बच्चे के लिए केशव से शादी की थी, लेकिन इतने सालों बाद आदर्श फिर से पुरानी बातें लेकर आया था, ये उसके लिए थोड़ा अजीब था। राधिका उसकी तरफ देख रही थी तभी आदर्श ने भारी आवाज़ में कहा, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राधिका प्लीज़ झूठ मत बोलना, हमारी शादी को 22 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, तुमने अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी की थी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या इतने सालों में कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ग्रो नहीं हुई। आदर्श ने आज तक राधिका से शिकायत नहीं की थी, आज उसके दिल की बातें सुनकर राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आदर्श, हम उस उम्र में नहीं रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत की बातें करें, इस बात को जाने दो कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, नहीं, जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि साथ रहते हुए तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन तुमने तो कभी मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, ये मेरे लिए काफ़ी है। पर तुम बदल गई हो राधिका, जब से तुम्हें केशव के यहाँ होने का पता चला है, तुम्हारा दिल बेचैन हो गया है, जैसे उसकी तरह तुम भी उससे मिलना चाहती हो, आदर्श ने नम आंखों से कहा। आदर्श, जो अब तक इतना इमोशनल होकर बात कर रहा था, अचानक वो राधिका के पास आया और उसका चेहरा पकड़कर दबाते हुए कहा, मिलना चाहती थी ना तुम उससे? पिछले 22 साल 4 महीने 10 दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे हर एक लम्हा याद है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नहीं, उसके लिए प्यार है। तुम उससे मिलने के लिए कैसे जा सकती हो? इतने सालों बाद जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आए तो तुम्हारी आंखों में नफरत नहीं, उसके लिए प्यार था। अचानक राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वो जिस दिन केशव से मिलने गई थी, इस बारे में इशिका के अलावा किसी को पता नहीं था, फिर आदर्श इस बारे में कैसे जान सकता था? आदर्श ने कसकर राधिका का मुंह पकड़ रखा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, क्यों मिलने गई थी तुम उससे? अपने पुराने लवर की याद आ रही थी तुम्हें, या ये सोचा कि उसके यहाँ आते ही फिर से उसके पास चली जाऊंगी? राधिका ने कसकर अपनी मुट्ठियों को बंद किया और सख्ती से जवाब में कहा, मैं उससे मिलने नहीं गई थी। इशिका ने एक अनजान आदमी से मिलने का वादा किया था। मैं नहीं जानती थी ये कैसे हुआ, लेकिन तुम इस बारे में कैसे जानते हो आदर्श? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? राधिका के दिमाग में पुरानी बातें ताज़ा हो गई थीं। वो अचानक केशव से मिली और उसे देखकर इमोशनल हो गई। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाले थे कि उसके पास वो किडनैपिंग वाली कॉल आ गई थी। अचानक राधिका की आंखें बड़ी हो गईं और उसने आदर्श से कहा, तो क्या तुमने वो सब